तीन, बिहारी के प्रेम का स्वरूप। मानवीय जीवन को सरस और सृजनशील बनाने के लिए प्रेम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। प्रेम के अनेकानेक रूपों में नर नारी का प्रेम सर्वाधिक पूर्ण तथा तादात्म्य मूलक होता है। इस प्रेम के स्तरों के संबंध में विचार करने पर स्थूल रूप से इसके तीन स्तर माने जा सकते हैं, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक। किंतु इन स्तरों को अलग अलग कटघरों में बांट देना मनोवैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। अपने आदिम रूप में भी प्रेम मात्र भौतिक नहीं हो सकता। शारीरिक मिलन के पूर्व भी जिस प्रकार के उल्लास, पुलक, आनंद या पीड़ा का अनुभव प्रेमी को होता है, उस प्रकार का अनुभव किसी अन्य भौतिक उपलब्धि द्वारा नहीं हो पाता। प्रेमिका के आत्मिक सौंदर्य संवेगात्मक तथा बौद्धिक सौंदर्य का कम मूल्य नहीं आंका जा सकता। फिर भी प्रेमोत्पादन में भौतिक आकर्षण शारीरिक आकर्षण के महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता। सौंदर्य के वस्तुपरक पक्ष का वर्णन साहित्यकारों का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। यहीं पर पुराना सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या सौंदर्य वस्तुनिष्ठ है? इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि यह आंशिक रूप से ही सही है। साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने नारी के प्रत्येक अंग का जो निरूपण कर रखा है, उसके लिए जो अप्रस्तुत चुन रखा है, वह सौंदर्य की वस्तुनिष्ठता का द्योतक है। पर इस वस्तुनिष्ठ सौंदर्य को एक विशेष संदर्भ में सौंदर्य तब माना जाएगा जब वह प्रेमी के आकर्षण का हेतु हो सके। इसलिए सौंदर्य शास्त्रियों ने विषय और विषय के पारस्परिक संबंधों में सौंदर्य की सन्निहिति मानी है। प्रेम का आत्मिक स्तर वह है जहां पहुंचकर भौतिक आकर्षण की अपेक्षा आत्मिक सौंदर्य के प्रतिमन की ललक अधिक दिखाई पड़े। इससे उत्पन्न उल्लास से एक व्यापक सौंदर्य चेतना आविर्भूत होती है। जीवन का अनुकूल वंदनीय नवीन स्पंदन सुनाई पड़ता है। इसके द्वारा जो संवेदना अथवा संवेग जागृत होता है, वह व्यक्ति विशेष के प्रति केंद्रित होते हुए भी उसका अतिक्रमण कर जाता है। रोमांटिक प्रेम का यही स्तर है। आध्यात्मिक प्रेम में प्रेमी आत्म केंद्रबद्ध नहीं रह जाता। उसका केंद्र ऐसा व्यापक हो जाता है कि वह केंद्र केंद्र न रहकर वृत्त में बदल जाता है। कहना न होगा कि कृति कवियों का प्रेम पहले प्रकार का है, अर्थात वह भौतिक धरातल से ऊपर नहीं उठ पाता। उनके प्रेम का मुख्य प्रेरक स्रोत शरीर सौंदर्य है और उसकी चरम परिणत भी वही है। बिहारी का कहना है, स्तोतन अवधि अनूप रूप लग्यो सब जगत को मो दृग लागे रूप दृगन लगी अति चटपटी। यहाँ पर नायक के दृग नायिका के रूप से लग गए हैं, अर्थात उस पर अनुरक्त हो गए हैं। बिहारी ही नहीं, रूप की रमणीयता के प्रति आकृष्ट होना सहृदय का सहज धर्म है। किंतु प्रेम के संबंध में बिहारी तथा अन्य रीत कवियों की मान्यताएं सर्वथा लौकिक स्तर पर ही रह गई हैं। लौकिक स्तर का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर किसी पारलौकिकता या अलौकिक स्तर की मांग की जा रही है। इसका इतना ही अर्थ है कि उनके प्रेम वर्णन में हृदय को व्यापक बनाने वाली प्रकाश की किरण नहीं है। सरस सुमिल चित तुरंग की करी करी अमित उठान गोह निबाहे जीत ये खेल प्रेम चौगान। यहाँ पर प्रेम चौगान का खेल है। सचमुच में बिहारी का मन इस खेल में खूब रमा है। इसमें अनेक प्रकार के दांव पेंच लुका छिपी की जरूरत पड़ती है। इस चौगान को जीतने के लिए अमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसमें रीत काव्य के नायकों को काफी कमाल हासिल है। रीत काव्यों के नायक अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों के कारण खुलकर प्रेम नहीं कर सकते थे। उनके प्रेम में वह आवेग नहीं था जो इन प्रतिबंधों को अपनी प्रखर धारा में बहा ले जाता। खेल में तो सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, जिससे अन्य लोगों से छिप कर अपने कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। चौगान खेल को रीत कवियों के प्रेम का प्रतीक माना जा सकता है। इसके ठीक विपरीत स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों ने डंके की चोट पर कहा है, अतिसुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयान पाक नहीं तहाँ साँचे चले तजी आपन पौ झिझकें कपटी जे निशाक नहीं घन आनंद। लोक की लाज असोच प्रलोक को वार ये प्रीति के ऊपर दो गाम को गेह को देह को ना तो स्नेह में हाथों करे पुनि सोउ। बोधा सुनीति निबाह करे धर ऊपर जाके नहीं सिर होउ। लोक की भीति डेरात जो मीत तो प्रीति के पैड़े परे जनी को बोधा। उन्होंने प्रेम को वह नई मर्यादा दी जो लोक शास्त्र निबद्ध मान्यताओं को अतिक्रमित कर जाती है। उन्हें लौकिक बंधनों की कोई चिंता नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्ति, जैसा पहले कहा जा चुका है, यथार्थ को नई दृष्टि से देखता है। वह ऐसे नए मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है जो परंपरा के मेल में नहीं होते। वह निशंक होकर प्रेम पंथानुगामी होता है। वह गुमराह करने वाले अवांछनीय तत्वों को, घर के महत्व, लोक की निंदा आदि को नगण्य मानता है। उनके प्रेम के मूल में भी रूपाशक्ति है, वह पर वह उनके लिए खेल नहीं है। प्रेम उनके जीवन मरण का सवाल बन गया है। प्रेम की महत्ता और गहराई के संबंध में बिहारी जैसे विचक्षण कवि अपरिचित नहीं थे। जिस कवि ने शास्त्रीय परंपराओं का इतना मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया हो, वह प्रेम के महत्व से अनभिज्ञ हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। इन्होंने लिखा है, गिरते ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहां हजार, वह सदा पसनरन कौं प्रेम पयोधि पगार। इस दोहे में रसिकों की ऊंचाई और प्रेम पयोधि की निमग्नता के साथ साथ उसे छिछली तलैया समझने वाले नर पशुओं का भी उल्लेख किया गया है। पसनरन शब्द कब की छल्लाहट का द्योतक है। प्रेम की वास्तविक महत्ता को न समझकर उस पर टीका टिप्पणी करने वालों पर गहरा व्यंग्य है। उनका प्रेम समुद्र की भांति अटल, निर्बाधित और अनंत है, फिर भी उसी की भांति अपनी सीमाओं में रहने वाला। यही नहीं, उन्होंने उपचार निरपेक्ष प्रेम की भी चर्चा की है। नयकन झर सी बिरह झर नेह लता को मिलाती, नित नित होती हरी हरी खरी झालरत जात। इसे कालिदास के उस श्लोक की प्रतिध्वनि समझना चाहिए जिसमें विरह के प्रेम में राशिभूत होने का उल्लेख हुआ है। स्नेहा नाहुह किमपि विरहे ध्वंसि नस्ते त्वभोगात्, इष्टे वस्तु न्युपचितरसाह प्रेम राशि भवन्ति। यही नहीं, सज्जन के स्नेह का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, चटक न छाड़त घटत हूँ सज्जन नेह गंभीर, फीको परय न बरु फटय रंगे चोल रंग चीर। सज्जन का स्नेह चोल रंग में रंगे चीर की भांति फट जाने पर भी घटता नहीं। पर इन स्फुट उक्तियों को परंपरा का ही आग्रह समझना चाहिए, बिहारी की अपनी मान्यताओं का नहीं। वे नागर रुचि के व्यक्ति थे और नागर संस्कृत को उन्होंने खुली अभिव्यक्ति दी है। इस अर्थ में वे अन्य रीति कवियों से कुछ भिन्न थे। जहां अन्य कवियों को पहले के संस्कारों का भय था, वहां बिहारी इससे बहुत कुछ मुक्त थे। भयग्रस्त रीति कवियों ने एक ओर यथा अवसर ऊंचे ऊंचे आदर्शों की दुहाई दी है, वहां दूसरी ओर खुले श्रृंगार का वर्णन भी किया है। बिहारी में इस तरह का खास अंतर विरोध नहीं दिखाई देगा, इसलिए उनकी सच्चाई में तत्कालीन सामंतीय प्रेम का जितनी ईमानदारी से चित्रण हुआ है, उतनी ईमानदारी से अन्य समसामयिक काव्यों में नहीं हुआ है। जिस क्रीड़ापरक प्रेम का चित्र उन्होंने उरेहा है, वह वस्तुतः सामंतीय है। पहले कहा जा चुका है कि रीति काव्यों के प्रेम का मुख्य आकर्षण केंद्र शरीरी सौंदर्य था। बिहारी ने इसका वर्णन चार रूपों में किया है, प्रभावात्मक रूपों में, वस्त्राभूषणों के बीच में, घरेलू वातावरण में और परंपरा के मेल में। प्रभावात्मक, जहां कवि रूढ़ियों से सर्वथा मुक्त होकर सौंदर्य की प्रभावान्वित का वर्णन करता है, वहां पाठकों की ऐन्द्रिय चेतना को सर्वथा उद्बुद्ध करने में शक्य होता है। स्वयं सौंदर्य किसी अंग विशेष में नहीं होता और न तो अंगों के सुषमा संस्थान में ही उसकी संस्थित स्वीकार की जा सकती है। सब मिला जुला कर वह ऐसा प्रभाव होता है जो हमारी रागात्मिका वृत्ति को उभार देने में पूर्णतः समर्थ होता है। प्रभावमूलक सौंदर्य का एक उत्कृष्ट चित्र देखिए, अंग अंग छवि की लपट उपटत जाति अछेह, खरी पातरीयूत लगे भरी सी देह। मुक्ताफल की छाया के तारल्य की भांति अंगों में प्रतिभाषित होने वाला लावण्य सौंदर्य है। नायिका के अंग अंग में छवि की चमक निरंतर उभरती जाती है। यद्यपि कवि का मुख्य कथ्य यही है, फिर भी इतने से उसके लावण्य को उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उसकी छवि द्वारा उठती हुई तरंगों का जो परिवेश निर्मित किया गया है उसके द्वारा उसकी तनुता भरी भरी सी लगती है। वहीं नायिका के सौंदर्य को ऐन्द्रिय और प्रभावासन बना सका है। इस दोहे की श्रेष्ठता किस पर निर्भर है? अभी यह प्रश्न अनुत्तरित सा ही रह गया। इसका उत्तर पाने के लिए एक दूसरा दोहा भी देखना पड़ेगा। अंग अंग नग जगम गए दीप सिखासी देह दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे। नायिका के अंग अंग के कोष्ठ में आभूषणों नग उसकी दीप सिखा सी देह से जगमगाते रहते हैं, इसलिए दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला रहता है। इस दोहे में भी देह की द्युति का ही वर्णन किया गया है। दोनों दोहों में छवि की लपटों या दीप शिखा की निर्धूम लौ के प्रभाव की व्यंजना की गई है, पर जहाँ पहले का प्रभाव जीवन और जगत की अनुभूत छवियों से बांध दिया गया है वहाँ दूसरे का प्रभाव एक मिथ्या और काल्पनिक सत्य से बांधा गया है। पहले दोहे में छवि की लपट और उससे उत्पन्न प्रभाव के अंतर संबंधों को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि पाठकों के राग तत्व को सहज ही छू लेते हैं। दूसरे दोहे में दीप सिखासी देह तथा प्रकाश का अंतर संबंध स्थापित ही नहीं हो पाया है। इन संबंधों को बहिस्संबंध ही कहा जाएगा। यह चमत्कार विधायक तो है पर राग विधायक नहीं। खेद है कि विशुद्ध प्रभावात्मक रूप चित्र बिहारी में कम है। वस्त्राभूषणों के बीच रीत कवियों ने नायिका के सहज सौंदर्य का उतना ध्यान नहीं दिया जितना उनके अलंकृत सौंदर्य पर। रीतकालीन वैभव विलास के अनुकूल नायिकाओं का भी उन्मादक चित्र खींचना उनकी रुचि के अधिक अनुकूल था। वस्त्राभूषण नायिका के आभिजात्य के सूचक, शालीनता के रक्षक, सौंदर्य के अभिवर्धक और नायक के प्रेम के उद्दीपक हैं। वे अपनी रंगीन छाया से नायिका के में नवीन आकर्षण और मादकता भर देते हैं। इस तरह के सौंदर्य चित्र बिहारी में ढेर मिल जाएंगे। एक एक करके कुछ उदाहरण देखिए। सहज सेत पचतोर या पहिरत अति छवि होत जल चादर के दीप लौ जगमगात तन जो। पंचतोलिया एक प्रकार का अत्यंत बारीक महीन वस्त्र है। उसकी पूरी साड़ी तौल में केवल 5 तोले की हो। इस वस्त्र के पहनने से नायिका की शोभा विशेष बढ़ जाती है। स्वभाव रमणीयानि मंडितानि अति रमणीयै भवन्ति। स्वभाव से ही रमणीय नारी वस्त्राभूषणों से मंडित होने पर और भी रमणीय हो जाती है। धनिकों के किसी उद्यान में किसी किसी ऊंचे स्थान से जल का झीना तथा विस्तृत प्रवाह गिराया जाता है। यह जल चादर कहलाता है। किसी किसी जल चादर के पीछे से जगमगाती हुई दीपावली बड़ी शोभा देती है। इस दीपावली को बिहारी ने जल चादर के दीप कहा है। पंचतोलिया से आवृत नायिका के शरीर की पीताभ कांति जल चादर के पीछे रखे हुए दीपकों की भांति जगरमगर करती हुई शोभित हो रही है। यहाँ पर भी वही पुराना प्रश्न उठता है कि यदि सौंदर्य का यह चित्र श्रेष्ठ है तो क्यों? इस क्यों का उत्तर ही मूल्यांकन है। छंदों का अन्वय मात्र न तो आलोचना है और न मूल्यांकन। श्वेत पंचतोलिया वस्त्र से झांकता हुआ नायिका का पीताभ सौंदर्य उसी प्रकार से शोभन प्रतीत होता है जिस प्रकार से जल चादर के पीछे से जगमगाती हुई दीप शिखाएं। इस चित्र की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर है कि कवि वास्तविकता से कहाँ तक संबंध स्थापन कर सका है और स्वयं वह वास्तविकता किस प्रकार की है। नायिका की छवि मानसिक वास्तविकता साइकिक रियलिटी है और जल चादर का दीप भौतिक वास्तविकता फिजिकल रियलिटी। निश्चय ही इसके संबंध स्थापन में कवि को सफल कहा जा सकता है। अप्रस्तुत ने नायिका के पारदर्शी सौंदर्य को जिस ढंग से प्रत्यक्षीकृत किया है वह सराहनीय है। प्रभावात्मक चित्र की अपेक्षा यह अधिक रंगीन और रंजक है, किंतु इसे उतना संवेदनात्मक नहीं कहा जा सकता है। उतना संवेदनात्मक का अर्थ यह नहीं है कि यह संवेदनात्मक नहीं है, यहाँ केवल संवेदना के दर्जे का सवाल है। छियौल छबीलो मुख लसय नीले अंचल चीर मनोकला निधि झलमलय कालिंदी के नीर। इस सौंदर्य चित्र में जो संबंध स्थापन किया गया है वह भी कृत्रिम ही है। पर इसमें साध्यवसान संवेदना के रूप में हुआ है, इसलिए इसकी संवेदनात्मक गहराई भी श्लाघ्य है। उत्प्रेक्षा के रूप में जो अप्रस्तुत ले आया गया है वह पहले उदाहरण में ले आए गए अप्रस्तुत की अपेक्षा अधिक व्यापक और सार्वजनीन है, पर पहले उदाहरण की तरह यह न ही रंजक है और न प्रभावोत्पादक। बात यह है कि इसका अप्रस्तुत लोक सिद्ध है, जो सामान्यतः उपमा के क्षेत्र में गृहित होता है अथवा अयथास्थान प्रस्तुत होने के कारण यह अपेक्षाकृत श्रीहीन लगता है। 3. चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इसका अप्रस्तुत भी संभावना मूलक है, लेकिन संभावना मूलक अप्रस्तुत में भी दर्जों का अंतर स्वीकार करना होगा। पहले और दूसरे उदाहरणों की अपेक्षा इसका अप्रस्तुत प्रस्तुत का ऐन्द्रिय बिंब उपस्थित करने में असमर्थ है। उछलते हुए जुगमीन चमकती हुई चंचल आँखों का दृश्य खड़ा करने में निर्बल प्रतीत होते हैं। इस तरह के रूपों चित्रों में बिहारी की प्रतिभा जहाँ रम सकी है वहाँ के चित्र निश्चय ही संवेद्य बन पड़े हैं। परंपरा, यद्यपि बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा फिर भी उनकी दृष्टि से लक्षण ओझल नहीं थे। उन पर रीत परंपरा और शास्त्रीय रूढ़ियों का गहरा प्रभाव था। नायिका का नक्श रूप वर्णन संस्कृत कवियों का भी प्रिय विषय था। रीतकाल में तो नक्षिक वर्णन की अत्यधिक बहुलता दिखाई पड़ती है। बिहारी ने नक्षिक वर्णन क्रमबद्ध रूप में नहीं किया है, पर अधिकांश रूपायक अवयवों का जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है वह परंपरा भुक्त ही है। कुछ उदाहरण देखिए। केश सहज सचिक्कन श्याम रुचि सुधि सुगंध सुकुमार गणत नमन पथ अपथ लखी बिथुरे सुथरे बार। भौं चितवनि भौं कमान गढ़ रचना बरुनी अलक तरुणि तुरंगम तान आख बकाई ही बढ़े। नयन बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन हरिनी के नयनान ते हरिनी के ए नयन। मुख सुर उदित हूँ मुदित मन मुख सुषमा की ओर चितय रहत चहु ओर ते निहचल चखनि चकोर पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास नित प्रतिपुण्योई रहत आनन ओप उजास। हास्य नयक हँसोही बानी तज लख्यो परत मुख नीठ चौका चमकन चौंध में परत चौंधि सी डीठ। कटि ज्यों ज्यों जोबन जेठ दिन कुछ मिति अति अधिकाति त्यों त्यों छिन छिन कट छपा छीन परति सी जाति। जंघा जंघ जुगल लोयन निरे करे मनो विधि मैन केलि तरुण दुख तैन ए केलि तरुण सुख तैन। एड़ी पाय महावर दैन कौ नाइन बैठी आय फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाय। पगतल पग पग मग अगमन परत चरण अरुण दुति झूल ठौर ठौर लखियत उठे दुपहरिया से फूल। उपर्युक्त उदाहरणों में कोष्ठ में अंतिम कुछ जिन अवयवों का सौंदर्य वर्णन हुआ है वे हमारे सौंदर्य बोध को किंचित भी उद्बुद्ध नहीं कर पाते। इनमें बाह्य वास्तविकताओं से जो संबंध स्थापन हुआ है वह कृत्रिम है। सूर्योदय होने पर भी चकोर का मुख सुषमा की ओर देखना चमत्कार मूलक है, संवेदना मूलक नहीं। यह चमत्कार भी घटिया दर्जे का ही कहा जाएगा। पत्रा ही तिथि पाइये कि अंतर संबंध तो वास्तविकता से और भी दूर हैं, इसलिए उसका सौंदर्य उर्दू शायरी की विदग्धता का भी अतिक्रमण कर जाता है। उसी प्रकार यवन को ज्येष्ठ का दिन और कट को रात्रि कहना असंगत और यथार्थ जगत से कितना दूर है। काव्य में प्रयुक्त अप्रस्तुत हमारे अनुभव जगत से जितने दूर होंगे प्रस्तुत अप्रस्तुत का संबंध स्थापन जितना ही कृत्रिम होगा काव्य पाठकों को रसावेश की स्थिति में ले आने में वह उतना ही असमर्थ होगा। हरिणी के नयनान केल तरुण आज तो पीटे पिटाए अप्रस्तुत हैं। संयोग रीत काव्यों में संयोग श्रृंगार के प्रति जितनी ललक दिखाई पड़ती है उतनी वियोग श्रृंगार के प्रति नहीं। संयोग श्रृंगार का मूलाधार शारीरिक आकर्षण है जो अनेक प्रकार के रूपों भंगिमाओं चेष्टाओं वाचिक और शारीरिक विकारों मानसिक दशाओं आदि में प्रस्तुत होता है। इस प्रसंग में कवि परंपरा से सुरति षडृत वर्णन विहार मद्यपान क्रीड़ा अष्टयाम आदि का वर्णन करते आए हैं। दर्शन श्रवण स्पर्श संलाप आदि के सहारे संयोग का बड़ा महल खड़ा किया जाता है, इसलिए इनका समावेश भी इस काल की कविताओं में खूब हुआ है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इन कवियों का विशेष रूप से विहारी का मन क्रीड़ा परक प्रेम में बहुत अच्छी तरह रमा है। इसके फलस्वरूप इनकी सत्सई में सूरत चित्रों का भूरिशह उल्लेख हुआ है। जिस हाव योजना या भंगिमा वर्णन में बिहारी की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है उसके मूल में भी यही प्रवृत्ति समझनी चाहिए। भंगिमाएं दो प्रकार की मानी जा सकती हैं, स्वाभाविक और सचेष्ट। स्वाभाविक भंगिमा वह होती है जिसमें अपने व्यापार के मूल में व्यक्ति का कोई मनोविकार अनुस्यूत नहीं रहता। सचेष्ट भंगिमा सुद्देश्य होती है, एक विशेष प्रकार की भंगिमा जो संभोगेच्छा सूचक होती है, काव्यशास्त्र में हाव कही जाती है। बिहारी सत्सई में दोनों प्रकार की भंगिमाओं के चित्र मिलेंगे, पर श्रृंगार काव्य में निरपेक्ष भंगिमाओं का कोई महत्व नहीं है, इसलिए स्वाभाविक भंगिमाओं को भी दृष्टा की प्रतिक्रियाओं से बांध दिया गया है। दूसरे शब्दों में इन भंगिमाओं को नायक के दृश्य से अर्थ दिया गया है। पहले हम इसी का विवेचन करना चाहेंगे। एक उदाहरण देखिए, जज्यों उझकी झापत बदन झुकत बिहसी सतराय तत्यों गुलाल मुठी झुठी झक झज कावत पिए जाए। यह फाक का अवसर है, नायक नायिका पर गुलाल फेंकने के लिए प्रस्तुत है। आंखों में गुलाल पड़ जाने के भय से वह घूंघट में मुंह ढांपती है और कुछ झुक जाती है, फिर हंस देती है, आखिर में झल्ला भी जाती है। नायक को उसकी चेष्टाएं इतनी सुखद प्रतीत होती हैं कि वह फिर फिर उन्हें देखने की अभिलाषा से झूठे ही मुट्ठी ताने रहता है। यहाँ चेष्टा का सुख कितना काम्य हो उठा है। इस खेल का एक दूसरा दृश्य देखिए, नाक चढ़े सीबी करे जीते छबीली छैल फिर भूल गए वह प्यो कंकरेली गैल। इसके अवतरण का उल्लेख करते हुए रत्नाकर जी ने लिखा है, नायक नायिका दोनों कहीं जा रहे हैं, मार्ग का एक भाग तो लोगों के चलते चलते चिकना हो गया है और दूसरा भाग कंकरीला है। नायक प्रेम के मारे नायिका को तो अच्छी ढुरहुरी पर लिवाया जाता है और स्वयं उसके पांव में कंकड़ियां चुभती हैं। उसकी चेष्टा से यह बात ज्ञात है करके कि नायिका प्रेमाधिक्य के कारण उसकी पीड़ा से पीड़ित होकर सीबी करती और नायक को उसी मार्ग से चलने को बरसती है। नायक उसका कहना मानकर कुछ दूर तो इस प्रकार सिमट कर चलता है कि उसको कंकड़ियां न गड़े, पर नायिका का वह नाक चढ़ाकर सीबी करना उसे ऐसा भा गया है कि वह फिर जानबूझकर उसके चिढ़ाने तथा उसकी वह मोहिनी चेष्टा देखने के निमित्त ऐसा करता है और वह फिर उसी प्रकार नाक चढ़ाकर सीबी करे। यहाँ भी सीबी का व्यापार निश्चिष्ट है, पर नायक को उससे सुखानुभूति प्राप्त होती है। कुछ उदाहरण और लीजिए, बिहसति सकुचति सी दिए कुछ आचर बिच बाह भीजे पट तट को चली नहाय सरोवर माह बढ़त निकसी कुछ कोर रुचि कढ़त गौर भुजमूल मन लुटि गौ लोटन चढ़त चोटन ऊंचे फूल। अहे दहेड़ी जिन धरे जिन तू ले ही उतार नीके हैं छीके छुए ऐसे ही रहिनार। पहले उदाहरण पर एक टिप्पणी देखिए, स्तन नारी का एक स्वाभाविक आकर्षण अंग है। स्नानोपरांत झीना वस्त्र उसके शरीर में चिपक जाता है, अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वह पाहों में स्तनों को ढक लेती है। कामजन्य डर के अभाव में लज्जा की भावना उद्दीप्त नहीं होती। एकांत में स्नान करती हुई स्त्री के लिए गोपन क्रिया बहुत आवश्यक नहीं है, यह कामजन्य संकोच दूसरे व्यक्ति के सामने ही उत्पन्न होता है, विशेष रूप से पुरुष के सामने। स्मरण रखने की बात है कि बिहारी की नायिका सरोवर से निकल रही है। इसके तट पर बिहारी जैसे रसिकों का जमघट लगा रहता होगा। अतः शालीन नायिका के लिए आवश्यक था कि वह अपनी बाहों में स्तनों को ढक लेती। विद्यापति की सद्य स्नाता तरुणी नायिका के सामने कोई पुरुष या नारी नहीं है, अतः कवि को उसके नग्न सौंदर्य के वर्णन में कोई शालीनता जन्य बाधा नहीं प्रतीत हुई। यह शुद्ध लज्जा अथवा शालीनता का उदाहरण है। इसे हाव से सर्वथा भिन्न समझना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार की भंगिमाओं को मैंने स्वाभाविक कहा है। दूसरे उदाहरण में नायिका ने नायक को फूल चुनते समय देखा है। इस क्रिया में हाथ को ऊंचे करने पर ग्रीवा को पीछे की ओर झुकाने में उसके कुछ आगे निकल आए हैं एवं अंचल के सरकने से भुजमूल का उदर कुछ उघर गए। इस अवस्था में उसकी त्रिवली देखकर नायक का मन लुट गया। तीसरे उदाहरण में छींके पर दहेड़ी रखने का नायिका का व्यापार नायक को अत्यंत प्रिय लग रहा है। इसीलिए वह कहता है कि तू दहेड़े छींके पर न रखो और न उतारो, छींके को अच्छी तरह से छू रखो। इस स्थिति में रहने से नायक को तनाव के कारण उसके वक्ष का इंद्रियोत्तेजक उभार देखने का शुभ अवसर मिलता रहेगा। यह भंगिमा भी छींके के छूने से अपने आप बन गई है, पर नायक को उसमें चक्षुरंजन का एक मौका मिल जाता। उपर्युक्त भंगिमाओं में फाग के अवसर पर जो भंगिमा दिखाई गई है वह सर्वाधिक सुंदर और संवेद्य है। वह अपेक्षाकृत अधिक गत्यात्मक है, इसीलिए श्रेष्ठ भी है। उसमें कवि ने जीवन के यथार्थ को एक ऐसे यथार्थ प्रसंग में चित्रित किया है कि वह बहुत ही स्वाभाविक तथा संवेदनापूर्ण बन गया। शेष चित्रों में स्नान करके निकलती हुई नायिका अपनी शालीनता कुष्ठ में मॉडेस्टी के कारण पाठकों को प्रिय लगती है। फूल लोढ़ने का चित्र इंद्रियोत्तेजक कुष्ठ में सेक्सुअल हो गया तो दहेड़ी रखने का चित्र ग्राम्य।